अध्याय संख्या एकादश गद्य शिक्षण। संस्कृत गद्य का महत्व। संस्कृत साहित्य में गद्य का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यजुर्वेद में ही हमें प्रथम बार गद्य के दर्शन होते हैं। तैत्तिरीय संहिता तक में हम गद्य का दर्शन कर सकते हैं। उपनिषदों में भी गद्य का भाग पद्य के भाग से अधिक है। इससे विदित होता है कि वैदिक काल में भी हम गद्य का प्रयोग होता था। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य कवीनाम निकसम वदन्ति। कविता में कवि अलंकार व पिंगल से बंधा रहता है, किंतु अलंकार व पिंगल शैली के विकास में मार्गदर्शक का काम करते हैं। काव्य में यदि कवि कोई भूल कर डालता है तो यह कहकर उस भूल की उपेक्षा कर दी जाती है कि मात्राओं के बंधन के कारण उसे ऐसा करना पड़ा, किंतु गद्य में लेखक के लिए कोई बंधन नहीं होता, इसीलिए उसे गद्य में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अलंकार एवं पिंगल जैसे मार्गदर्शकों का भी अभाव रहता है, अतः कवि को अपनी शैली के विकास में व्यक्तिगत गुणों का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि गद्य कवियों की कसौटी है। संस्कृत गद्य में दंडी सुबंधु और वाण के ग्रंथ मुकुटायमान हैं। इनके पूर्व के गद्य ग्रंथों में शैली का यह विकास नहीं मिलता जो कादंबरी या दश कुमार चरित में दिखाई पड़ता है। दंडी सुबंधु व बाण के ग्रंथ नीरस गद्य ग्रंथ ना होकर गद्य काव्य हैं और पाठक के मन को उतना ही आनंद प्रदान करते हैं जितना कि उच्च कोटि के काव्य। संस्कृत का गद्य साहित्य दश कुमार चरित के रचयिता दंडी संभवतः बाण से कुछ पूर्व के समय में थे और उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में सभी कार्यकलापों में दिव्य कौशल का वर्णन किया है। इसमें 10 राजकुमारों के एक दूसरे से विमुक्त होकर पुनः मिलने का वर्णन है। इसमें राजकुमार अपनी श्रृंगार रसपूर्ण शक्ति की गाथाएं सुनाते हैं। इनके माध्यम से दंडी ने भारतीय समाज के विलासी लोगों के जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। वासुदत्ता की रचयिता सुबंधु का काल 7वीं शताब्दी का है। वासुदत्ता में सुबंधु ने अपने युग की एक प्रणय कथा का वर्णन किया है। बाण रचित हर्ष चरित और कादंबरी तो संस्कृत साहित्य के अति प्रसिद्ध महाकथा ग्रंथ हैं। संस्कृत में कुछ जीवनियां भी लिखी गई हैं। 14वीं शताब्दी में मेरुतुंगाचार्य ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की, जिसमें विक्रमार्क, सातवाहन, मुंच, भोज, कुमारपाल, वराहमिहिर, भृतहरि, वाग्भट आदि विख्यात महापुरुषों की जीवनियों के साथ उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसी शताब्दी में राजशेखर का प्रबंध कोश भी रचा गया, जिसमें 24 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। 16वीं शताब्दी में वल्लाल सेन ने भोज प्रबंध की रचना की, जिसमें भोज की उदारता का वर्णन है। दंडी सुबंधु व बाण से संस्कृत में गद्य साहित्य को समाप्त नहीं समझना चाहिए। संस्कृत में गद्य साहित्य की रचना बाद में ही होती रही है। मारवाड़ प्रदेशवासी देव विजयगढ़ी ने 1596 ईस्वी में गद्य में रामचरित की रचना की है। 17वीं शताब्दी में महाकवि वरद देशिक ने श्लोकों के साथ एक गद्य रामायण की रचना की। मैसूर के राजा राज कृष्ण राज की सभा में राजपंडित श्री अहोविल नृसिंह ने अभिनव कादंबरी की रचना की, जिसमें राजकृष्ण के पराक्रमों का वर्णन है। 18वीं शताब्दी में अल्मोड़ावासी महाकवि विश्वेश्वर पांडे ने मंदार मंजरी की रचना की। 19वीं शताब्दी में श्री शैल दीक्षित तिरुमलाचार्य ने भारतीय विलास की रचना की, जिसमें शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स का अनुवर्तन है। कावेरी गद्य नामक ग्रंथ में उन्होंने कुर्ग प्रदेश स्थित तालकावेरी की तीर्थयात्रा का वर्णन किया है, जो श्री कृष्णाबुद्ध में श्री शैल ने कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। तिम्म कवि द्वारा रचित सुजन मना कुमुद चंद्रिका भी 19वीं शताब्दी का अच्छा गद्य ग्रंथ है। कोल्हापुर निवासी श्री अप्पा शास्त्री ने बंकिम चंद्र के लावण्यमयी नामक बंगाली उपन्यास का संस्कृत में सफल अनुवाद प्रस्तुत किया है। मद्रास के प्रसिद्ध विद्वान कृष्णमाचार्य द्वारा रचित पातिवृत्य पाणिग्रहण तथा वररुचि गद्य काव्य एवं सुशीला नामक उपन्यास प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित अंबिकादत्त व्यास काशी में जन्मे और पढ़े और बिहार के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने 75 ग्रंथ लिखे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शिवराज विजय है। शिवराज विजय में शिवाजी से संबंधित कथानक है। कांचीवासी अनंताचार्य ने जगन्नाथ प्रसाद के हिंदी उपन्यास संसार चक्र का संस्कृत रूपांतर किया। मैसूर के प्रसिद्ध विद्वान चक्रवर्ती राजगोपाल ने शैवालिनी कुमुदिनी विलास कुमारी तथा संगर नामक रचनाओं में ग्रामीण कथाओं को अमर बना दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्री कल्याणराम शास्त्री ने कनकलता नामक उपन्यास लिखा, जिस पर शेक्सपियर का प्रभाव है। तिरुपति वासी कृष्णमाचार्य ने मंदारवती की रचना की तो मैसूरवासी जग्गू अलवर अयंगर ने जयंतिका नामक उपन्यास लिखा और विद्वच परिचय पंचक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 5 विद्वानों के जीवन चरित्र का वर्णन है। आचार्य शेषशायी रचित अष्टावक्रियम सरल गद्य ग्रंथ है। कांचीवासी श्री शैल ताताचार्य ने दुर्गेश नंदिनी व क्षत्रिय रमणी नामक बंगला उपन्यास का संस्कृत अनुवाद प्रस्तुत किया। 1918 में बंकिम चंद्र ने कपोल कुंडला उपन्यासों का श्री हरिचरण भट्टाचार्य ने संस्कृत में अनुवाद किया। कन्नड़ प्रदेशवासी श्री नर सिंहाचार्य ने सौदामिनी नामक उपन्यास में विदर्भ की राजकन्या सौदामिनी व मगध के राजा सूरसेन के प्रेम का वर्णन किया है। आचार्य श्री शैल ने मेनका नामक उपन्यास लिखा, मेघवताचार्य द्वारा लिखा गया है। कुमुदिनी चंद्र नामक उपन्यास 20वीं शताब्दी की श्रेष्ठ उपलब्धि है। सन 1956 में श्री कृष्ण वामन चितले द्वारा रचित सुबोध संस्कृत लोकमान्य तिलक चरित नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ प्रकाशन तिलक जन्म शताब्दी के अवसर पर हुआ। ग्रंथ में सरल भाषा में तिलक का जीवन चरित वर्णित है। श्री भागीरथ त्रिपाठी वागीश शास्त्री द्वारा रचित कथा संवर्तिका में 13 लोक भाषाओं का सुंदर अनुवाद है। संस्कृत गद्य की विशेषताएं। संस्कृत गद्य में समास की शैली उसकी अपनी विशेषता है। जो बात अंग्रेजी भाषा में 2 पृष्ठों में लिखी जाएगी और हिंदी में 1 पृष्ठ में, वही बात संस्कृत में आधे पृष्ठ में ही आ सकती है। जिस बात को अंग्रेजी में कहने में 10 शब्दों का आश्रय लेना पड़ता है और हिंदी में 7-8 का, उसी बात को संस्कृत में संभव है 1 शब्द में कह दिया जाए। यह सब समास का ही चमत्कार है। संस्कृत में प्रायः गद्य और पद्य साथ साथ चलते दिखाई पड़ते हैं। उपनिषदों में यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, वेताल, पंचविंशतिका, सिंहासन, द्वांत्री शतिका, सुख सप्तति, भोज प्रबंध, भट्टक, द्वांत्री शतिका आदि पुस्तकें गद्य पद्य मिश्रित हैं, किंतु माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों में गद्य और पद्य के पाठ अलग अलग रहते हैं। संस्कृत साहित्य में गद्य के अंतर्गत हम कथाओं तथा आख्यायिकाओं को रख सकते हैं। कथा और आख्यायिका में कुछ भेद होता है। कथा कवि की कल्पना की उपज होती है और आख्यायिका में ऐतिहासिक तथ्य होता है, साथ ही शैली आत्मकथा की भांति होती है। गद्य पाठ में अंतर्गत हम कथा तथा आख्यायिका के अतिरिक्त पत्र, विचारात्मक निबंध, जीवन चरित्र वर्णन, यात्रा संस्मरण आदि रख सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों की लघु कथाओं में समास रहित सरल वाक्य हों और उच्चतर कक्षाओं में समास युक्त कुछ कठिन गद्य पाठ हो सकते हैं। स्नातक स्तर पर छात्रों को संस्कृत में मुकुटायमान गद्य ग्रंथों का रसास्वादन कराया जाए। गद्य शिक्षण के उद्देश्य। गद्य शिक्षण के उद्देश्य शैक्षिक स्तरों के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। नीचे इन उद्देश्यों को क्रमानुसार दिया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर कक्षा 6, 7 तथा 8। प्रथम, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो ताकि वे नए शब्दों का अर्थ समझकर उनका प्रयोग कर सकें। द्वितीय, वे पाठगत ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण कर सकें। तृतीय, उन्हें संस्कृत भाषा से परिचय प्राप्त हो सके। चतुर्थ, वे पाठगत भावों एवं विचारों को ग्रहण कर सकें। पंचम, छात्रों को अपने चरित्र विकास में सहायता मिल सके। षष्ठ, संस्कृत के प्रति हमें अनुराग उत्पन्न हो सके। मध्य स्तर कक्षा 9, 10, 11 तथा 12। प्रथम, छात्रों को अनेक प्रकार से के विषयों का ज्ञान देना जिससे वे नए वैज्ञानिक आविष्कारों तथा खोजों से परिचय प्राप्त कर सकें। द्वितीय, छात्रों के सूक्ति भंडार एवं शब्द भंडार में वृद्धि करना। तृतीय, छात्रों को पाठगत आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने चरित्र का निर्माण कर सकने की योग्यता प्रदान करना। चतुर्थ, उन्हें विविध गद्य शैलियों से परिचित कराना। पंचम, उनमें कल्पना शक्ति का विकास करना। षष्ठ, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देना। सप्तम, उन्हें लेखक के भाव के अनुसार गद्य पाठ का वाचन करने की क्षमता का विकास करना। अष्टम, संस्कृत भाषा के प्रति उनमें अनुराग उत्पन्न करना। उच्च स्तर स्नातक कक्षाएं। प्रथम, छात्र संस्कृत साहित्य की अक्षय निधि से परिचय प्राप्त करते हुए उच्च कोटि के गद्य काव्यों का अध्ययन करके उनसे आनंद प्राप्त करें। द्वितीय, वे विविध गद्य शैलियों का परिचय प्राप्त करके अपने अनुकूल शैली में लिखे गए ग्रंथों का विशेष ज्ञान प्राप्त करें। तृतीय, उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो। चतुर्थ, वे अपने चरित्र का विकास करें। पंचम, वे संस्कृत भाषा में अपने भावों को व्यक्त कर सकें। षष्ठ, वे अपनी तर्क शक्ति एवं विवेचनात्मक शक्ति का विकास करें। सप्तम, वे समालोचनात्मक शक्ति का विकास करके अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता प्राप्त करें। गद्य शिक्षण विधि। गद्य के सामान्य उद्देश्यों का ऊपर वर्णन किया गया है। इन सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रत्येक पाठ का मुख्य उद्देश्य भी होता है। मुख्य उद्देश्य में प्रस्तुत पाठ संबंधी वस्तुबोध का प्रायः उल्लेख किया जाता है। वस्तुबोध के अतिरिक्त पाठ संबंधी भाषा ज्ञान भी सम्मिलित रहता है। पाठों को सरल से कठिन क्रम से अनुसृत करके उनका अध्यापन किया जाना चाहिए। प्रत्येक पाठ का प्रारंभ करने से पहले पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करके यह देख लेना चाहिए कि प्रथम, इस पाठ के माध्यम से कौन कौन से नए, शब्द, मुहावरे, सूक्ति तथा लोकोक्तियाँ सिखानी है। द्वितीय, कौन कौन से संधि नियम तथा विग्रह समास बताने हैं। तृतीय, वाक्यगत शब्दों के बीच संबंध का द्योतन करने वाले कौन कौन से नए तत्व समझाने हैं। चतुर्थ, किस किस भाषाई कौशल का किस किस मात्रा में विकास करना है। इस प्रकार पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करने पर जो अध्यापन बिंदु निकाले उन पर विशेष बल देते हुए अध्यापन करना चाहिए। अध्यापन के समय इस बात का ध्यान रहे कि एक साथ बहुत से नए शब्दों तथा नियमों आदि पर अधिकार करने का प्रयत्न ना हो। तथा पंचम, पाठ को संबद्ध कथाओं, चुटकुलों, श्लोकों, कविताओं आदि से रोचक बनाने का प्रयत्न करना। प्रस्तुत पाठ का शिक्षण आरंभ करने से पूर्व अध्यापक को सर्वप्रथम विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रस्तावना में कुछ छोटे छोटे एवं निश्चित प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य बालकों की जिज्ञासा को जागृत करके उन्हें प्रस्तुत पाठ को ग्रहण करने के लिए उत्सुक एवं तत्पर बना देना है। इन प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत पाठ के लिए उचित भूमिका तैयार हो जाती है। छात्रों को उत्तरों से वर्तमान पाठ को संबंधित करते हुए शिक्षक वर्तमान पाठ के उद्देश्य की कक्षा में घोषणा कर देता है। प्रस्तावना के पश्चात अध्यापक को पाठ की प्रस्तावित अन्विति का आदर्श सस्वर पाठ करना चाहिए। पाठ को प्रायः कठिनता एवं विविधता की दृष्टियों से दो या तीन अन्वितियों में विभाजित कर लिया जाता है। प्रत्येक अन्विति के प्रारंभ में अध्यापक को आदर्श सस्वर वाचन करना चाहिए। आदर्श वाचन के पश्चात अध्यापक को उस अन्विति में संधि विच्छेद करना चाहिए। संधियुक्त पदों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। एक एक पद को श्यामपट पर लिखकर अध्यापक स्वयं बोले और छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराए। इस स्थल पर छात्रों द्वारा अनुवाचन भी कराया जा सकता है। अनुवाचन में अध्यापक वाक्य तथा वाक्यांश को पढ़ता है और छात्र भी उसी वाक्य या वाक्यांश का वाचन करते हैं। इसी क्रम से पूरी अनुवृत्ति का वाचन होता है। अनुवाचन ना भी कराया जाए तो कोई हानि नहीं है। शब्दोच्चारण के अभ्यास के पश्चात अध्यापक को पुनः अनुवृत्ति का आदर्श वाचन करना चाहिए। इसके पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से छात्रों को पढ़ते समय उनकी मुद्रा पर तथा उनके उच्चारण पर अध्यापक को विशेष ध्यान देना चाहिए। कतिपय छात्रों द्वारा प्रस्तावित अन्विति का अनुकरण वाचन कर लेने के पश्चात बोध परीक्षात्मक प्रश्न होने चाहिए। बोध परीक्षा के प्रश्न दो या तीन से अधिक नहीं होने चाहिए। ये प्रश्न उस अन्विति के केंद्रीय विचार पर ही होने चाहिए। इन प्रश्नों का उद्देश्य यह है कि शिक्षक छात्रों के उत्तरों द्वारा यह पता लगा सके कि छात्रों ने प्रस्तुत पाठ को कहाँ तक समझा और उन्हें कहाँ पर विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी आधार पर शिक्षक आगे की विस्तृत व्याख्या करता है। बोध परीक्षा के प्रश्नों के पश्चात व्याख्या का सोपान आता है। व्याख्या के अंतर्गत अर्थ ग्रहण, व्याख्याकार, पदार्थ, प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत अर्थ, भाषागत सौंदर्य आदि के संबंध में विचार कर लिया जाता है। संस्कृत में समासों के ज्ञान के बिना अर्थ ग्रहण एवं व्याख्या का कार्य संभव ही नहीं। समास विग्रह के बिना पदार्थ स्पष्ट नहीं होता। अतः प्राचीन टीकाकारों ने समास विग्रह एवं पदार्थ कथन साथ लिया है। व्याख्या के सोपान में शब्दार्थ अर्थात पदार्थ कथन बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न युक्तियों का आश्रय लिया जाता है। कुछ युक्तियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। प्रथम, वस्तु दिखाकर। इदम पंकजम अस्ति में पंकज के पुष्प को दिखाकर पंकजम का अर्थ स्पष्ट करना। इसी प्रकार इदम फलम, इदम पत्रम, इदम पुष्पम आदि को स्पष्ट करना। द्वितीय, चित्र दिखाकर। गौतम बुद्ध, बालकृष्ण आदि का चित्र दिखाकर अयम रामः, अयम डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः, अयम डॉक्टर जाकिर हुसैन, अयम गांधी जैसे वाक्यों को छोटी कक्षाओं में चित्र दिखाकर समझाना सरल होता है। तृतीय, मानचित्र दिखाकर कोसल, अवंती, धारा, साकेत, वैशाली, काशी, मगध, विदेह, मिथिला आदि को मानचित्र में दिखाकर स्पष्ट किया जा सकता है। चतुर्थ, प्रतिकृति, बद्रिका आश्रम, दंडकारण्य आदि की। पंचम, मूर्ति दिखाकर राम कृष्ण आदि की। षष्ठ, रेखा चित्र द्वारा वीणा ग्रंथ आदि का। सप्तम, अनुवाद, अलम विवादेन का हिंदी में अनुवाद करके अर्थात विवाद मत करो, इस प्रकार अन्य भाषाओं वाक्यों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद। अष्टम, टीका, लघु सिद्धांत, कौमुदी, कादंबरी आदि अनेक ग्रंथों की उत्तम टीकाएं उपलब्ध हैं, उनको देखकर अर्थ ग्रहण करना अध्यापक छात्रों को टीका से लाभ उठाने को प्रेरित कर सकता है। नवम प्रश्न, खंडान्वय विधि के आधार पर अथवा सामान्य रूप से प्रश्न पूछकर इस अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, रसालह शब्द का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि आम्रस्य कति नामानत्राणि भवन्ति। इस प्रश्न का उत्तर होगा रसालह सहकारः वनोत्सवः इति अनेकानि नामानि भवन्ति। छात्र यदि उत्तर नहीं देंगे तो अध्यापक स्वयं उत्तर दे देगा। दसम, तुलना, त्रीणानि नोन मूल्यति प्रभंजनों में तृण की वृक्ष से एवं प्रभंजन की मरुन्मंद मंदम से तुलना की जा सकती है। तुलना करते समय अनल अनिल गृह ग्रह कृतज्ञ कृतिग्न चिर चीर प्रसाद प्रासाद भुजंग भुंजग सुत सूत विहग विहंगम आदि शब्दों की ओर विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। शब्द रूपों की भी तुलना की जा सकती है। द्रुमस्य का अर्थ बताते समय फलस्य वृक्षस्य भृगस्य आदि रूपों को प्रस्तुत करना अथवा पठित्वा का अर्थ बताते समय खादित्वा हसित गत्वा आदि शब्द रूपों को प्रस्तुत करना अच्छा रहता है। एकादश, उदाहरण, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम में उदार का अर्थ स्पष्ट करने के लिए स्वामी दयानंद विवेकानंद गांधी जी आदि का उदाहरण दिया जा सकता है। द्वादश, अंतः कथा द्वारा भागीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए गंगावतरण की कथा सुनाई जा सकती है। स तू कुंभकर्ण जैसे वाक्य अंतः कथाओं के माध्यम से ही स्पष्ट किए जा सकते हैं। त्रयोदश, अर्थ कथन, सीधे सीधे अर्थ बता देना जैसे पंकजम माने कमल को व्याख्या द्वारा समझाया जाता है। चित्र आदि के अभाव में शालमली तरुवह कदम्ब आदि को भी व्याख्या द्वारा ही स्पष्ट करना पड़ेगा। आध्यात्म अहंकार आदि को स्पष्ट करने में व्याख्या सर्वोत्तम विधि है। पंद्रवा, वाक्य विश्लेषण, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों को सरल भाषा में विभक्त करना। 16, संधि विच्छेद, जैसे देवेश को देवधन ईसह में विभक्त करके समझाना। 17, समास विग्रह, गजाजनः दशाननः षडाननः चतुराननः पीताम्बरम् राम लक्ष्मणः राजपुरुषः प्रतिदिनम् आदि को समास विग्रह द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। 18, व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालकर उपसर्ग प्रत्यय विभक्ति आदि के ज्ञान द्वारा अर्थ स्पष्ट करना, यथा उक्तवान की व्युत्पत्ति वच धन कृतवत और परित्यज्य की उत्पत्ति परि धन त्यज धन ल्यप के रूप में की जा सकती है। 19, वाक्य प्रयोग, कठिन शब्द को सरल वाक्य में प्रयुक्त करके उसका अर्थ स्पष्ट करना, यथा हतवान को रामह रावणम हतवान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 20. कोश देखकर, कोश का प्रयोग करके कठिन शब्दों का अर्थ जाना जा सकता है। शब्द सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कोश का प्रयोग करना आवश्यक है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों में कोश के प्रति रुचि उत्पन्न करे। 21. उद्बोधन, अर्थ सीधे न बताकर छात्रों से ही निकलवाना, जैसे कह का अर्थ बताने के लिए श्यामपट का प्रयोग करके अन्य युक्तियों की सहायता से चित्र या रेखा चित्र बनाकर स्पष्ट करना। 22. पर्याय कथन, यथा भास्कर का अर्थ स्पष्ट करने में सूर्य, दिनेश, प्रभाकर, दिवाकर, मित्र आदि का कथन करके। 23. विलोम कथन, दिवस का अर्थ रात्रि दिवस कहकर, विराग का अर्थ अनुराग विराग कहकर, मंद का अर्थ मंद तीव्र कहकर स्पष्ट किया जा सकता है। 24. संकेत द्वारा, नयन, नासिका, कच्छ, श्यामपट, भित्ति, कक्ष आदि का अर्थ इनकी ओर संकेत करके समझाया जा सकता है। 25. अभिनय, गच्छ, अगच्छ, आनयति आदि क्रियाओं का अर्थ अभिनय द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रविधियों में वस्तु, चित्र, मूर्ति, प्रतिकृति आदि का प्रयोग उच्च स्तर पर अभिष्ट नहीं है। जीवित पशुओं को कक्षा में नहीं ले जाना चाहिए। कोई अत्याकर्षक चित्र भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से छात्र मुख्य पाठ को भूलकर विनोद में ही तत्पर हो जाते हैं। अंतःकथा भी संक्षेप में कहनी चाहिए, नहीं तो बहुत समय नष्ट होगा। संकेत के समय स्मरण रहे गुप्तांगों की ओर संकेत वर्जित है। अभिनय में नाचना, आंखें मटकाना आदि भी निषिद्ध है। व्याख्या का सोपान केवल पदार्थ कथन से ही समाप्त नहीं होता। इस स्थल पर यह भी देखना आवश्यक हो जाता है कि छात्र गद्य खंड के भाव को अच्छी तरह से समझ गए या नहीं। सामान्य अर्थ के साथ विशेष अर्थ की ओर भी इंगित करना आवश्यक है। छात्रों की लाक्षणिक अर्थों को भी स्पष्ट करना चाहिए। यह सब कार्य छात्रों की सहायता से होने चाहिए। इसके लिए उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जिससे भावों का विश्लेषण किया जा सके। प्रश्न और उत्तर संस्कृत अथवा मातृभाषा में हों। प्राथमिक एवं मध्य स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से विचार विश्लेषण उचित होगा, किंतु उच्च स्तर पर संस्कृत के माध्यम से विचार विश्लेषण उचित होगा। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक स्वयं ध्रुव भावों को स्पष्ट कर देगा। विचार विश्लेषण के प्रश्न समाप्त होने पर एक बार पुनः सस्वर पाठ होना चाहिए। समय मिलने पर अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और कतिपय छात्रों द्वारा सस्वर वाचन होना चाहिए। यदि समय की कमी हो तो केवल अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन तथा अथवा कुछ छात्रों द्वारा सस्वर वाचन से भी काम चल जाएगा। उपर्युक्त विधि से पाठ की सभी अनुवतियों को पढ़ा लेने के बाद पूरे पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न दो प्रकार के होंगे, एक तो वस्तुबोध का परीक्षण करने के निमित्त, दूसरे भाषा ज्ञान की परीक्षा से संबंधित। इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति प्रश्न कहा जाता है। पुनरावृत्ति के प्रश्न करने के पश्चात छात्रों के समक्ष कुछ प्रश्न अथवा अभ्यासार्थ समस्याएं प्रस्तुत की जाएंगी। इससे छात्रों द्वारा अर्जित नवीन ज्ञान को प्रयुक्त करने का अवसर मिल जाएगा। हर्बार्ट की पंचपदी में इसे प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के कार्य कक्षा में कराए जा सकते हैं अथवा घर पर करने के लिए दिए जा सकते हैं। अभ्यास कार्य का संशोधन एवं निरीक्षण परमावश्यक है। शिक्षक को नियमित रूप से गृह कार्य को देखना चाहिए। शिक्षण क्रम, इस दृष्टि से गद्य पाठ की पाठ योजना की रूपरेखा एवं उसके शिक्षण का क्रम निम्नलिखित होगा। प्रथम, सामान्य प्रारंभिक बातें, यथा दिनांक, कक्षा कालांश अवधि विषय शीर्षक द्वितीय सामान्य उद्देश्य तृतीय विशिष्ट उद्देश्य चतुर्थ सहायक सामग्री पंचम पूर्व ज्ञान षष्ठ प्रस्तावना सप्तम उद्देश्य कथन अष्टम विषयोपस्थापन क पाठ्य सामग्री ख शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन ग संधि विच्छेद कठिन शब्दोच्चारण तथा अनुवाचन ग छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन व बोध परीक्षा नवम विस्तृत व्याख्या क समास विग्रह ख पदार्थ कथन ग मौन वाचन घ विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न व शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण दसम सस्वर वाचन शिक्षक द्वारा अथवा छात्रों द्वारा एकादश पुनरावृत्ति द्वादश प्रयोग क कक्षा कार्य ख गृह कार्य गद्य पाठ योजना प्रथम विद्यालय का नाम दिनांक अध्यापक का नाम कक्षा आठ वर्ग खा विषय संस्कृत गद्य अवधि 40 मिनट शीर्षक भारतस्य राष्ट्रध्वजः कालांश प्रथम सामान्य उद्देश्य प्रथम छात्रों को गद्यांश के अर्थ तथा भाव भलीभांति समझाकर उन्हें अपनी भाषा में व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना द्वितीय लेखक के भावों एवं विचारों के अनुसार गद्यांश का वाचन करने की योग्यता प्रदान करना तृतीय छात्रों के सूक्ति भंडार एवं शब्द भंडार में वृद्धि करना चतुर्थ छात्रों को विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें बहुज्ञ बनाना पंचम उन्हें विविध गद्य शैलियों का परिचय प्रदान करना षष्ठ उनमें कल्पना तथा विचार शक्ति का विकास करना सप्तम व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें सहायता देना अष्टम पाठगत आदर्शों से प्रेरणा लेकर छात्रों को अपने चरित्र निर्माण करने के योग्य बनाना नवम संस्कृत भाषा के प्रति उनमें अनुराग उत्पन्न करना दसम छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना विशिष्ट उद्देश्य प्रथम छात्रों को राष्ट्रध्वज के गौरव व महत्व से परिचित कराना द्वितीय उन्हें राष्ट्रध्वज के तीनों रंगों और चक्र चिन्ह के रहस्य से अवगत कराना सहायक सामग्री प्रथम तिरंगा ध्वज तथा तिलक मालवी और गांधी जी के चित्र द्वितीय लपेट श्यामपट पर लिखित उच्चारणाभ्यास हेतु कठिन पद तृतीय अव्यय कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण चौक आदि पूर्व ज्ञान प्रथम छात्र अपने राष्ट्र के ध्वज के नाम व रूप रंग आदि से भली भांति अवगत हैं द्वितीय छात्र स्वतंत्र भारत में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना को महत्व भी जानते हैं प्रस्तावना प्रथम भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस कौन सा है द्वितीय 15 अगस्त सन 1947 को भारतवर्ष में किन लोगों की दासता से मुक्ति प्राप्त की थी तृतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे चतुर्थ हमारे देश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है पंचम स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री किस स्थान पर ध्वजारोहण करते हैं षष्ठ हमारे देश की इस ध्वजा का क्या नाम है उद्देश्य कथन प्रत्येक राष्ट्र की नीतियाँ आचार विचार और जीवन शैलियाँ दूसरे राष्ट्र से भिन्न होती हैं इसी भिन्नता के कारण हर एक राष्ट्र का ध्वज राष्ट्रगीत व राष्ट्र चिन्ह भी दूसरों से पृथक ही होते हैं भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक अपने ध्वज तिरंगा को गर्व के साथ उन्मुक्त आकाश में फहराया आज हम अपने राष्ट्र के इसी गौरवमय चिन्ह तिरंगा ध्वज की विशेषताओं का भारतस्य राष्ट्रध्वजा पाठ में अध्ययन करेंगे विषय वस्तु जयति राष्ट्रध्वजा स्वतंत्र भारतस्य अस्मिमस्त्र रागः विराजन्ते हरितः शुक्लः केसरश्च ते तथा क्रमं भारतस्य तं सत्वरज सु त्रिष्वपि माया गुणेषु विजयं सूत्रयन्ति शुक्ले रागे कित चक्रंच भारतस्य शील शालिषु राष्ट्रेषु चक्रवर्तीन इव प्रधानतां निवेदयति। अस्मिन् ध्वजे स्थित रागः परस्परस्य शोभा वर्धयन्ति ते शिक्षयन्ति भारतीयानां यूयमपि वयमिवान्योन्य शोभां समेधयन्तो बंधु भावेनात्र वसत् यथात्र शुक्लं रागं नील रक्तो न रंजयतः नीलश्च चक्र रक्त न मलिनयति तथा अस्मा वस्पि कश्चित् केनचित् संभूय व एकांकी व कंचनान्य नाच्छाद्येत न बाधेत सर्वेपि स्वस्व धर्मे स्थिरा संतो जीवेयुः। अस्यैव त्रिरागस्य ध्वजस्य छायायाम् अस्माकं पूर्व जयस्तिलक मालवीय गांधी प्रभृतिभिर्नेतृभिः सत्यम अहिंसा अंचावलम्य स्वातंत्र्यं प्राप्तम् इयं सुतंत्रता अस्माभिः अगस्त मासस्य पंचदश तारिकियो सप्त चत्वारिंशदधिक एकन विंशतिशतक में कृदष्टात्वे प्राप्ता। अस्मिन्नेव दिने आयम राष्ट्रध्वजः विदिता आकाशे स्वतंत्र भारतस्य प्रथम तरंगितो अभवत्। अस्माभिरस्य गौरवं प्राण पणे नापि सदा रक्षणीयम्। विषयोस्थापन पाठ को निम्नलिखित अन्विति द्वय में विभक्त करके पढ़ाया जाए। प्रथम जयति यति राष्ट्रध्वज से जीवेयुः। द्वितीय अस्यैव त्रिरागस्य से रक्षणीयम् आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा प्रथमान्विति का काठिन्य निवारण। अध्यापक द्वारा निम्नलिखित पदों का उच्चारण संबोधन छात्रों को कराया जाएगा एवं संधि विच्छेद पूछा जाएगा। प्रथम अस्मिन्नस्त्रयो द्वितीय त्रिस्वपि चतुर्थ रागे अंकितम् चतुर्थ वयमि वान्योन्य शोभाम् पंचम बंधु भावने नात्र षष्ठ अस्मास्वपि सप्तम कंचनान्यम अनुकरण वाचक कतिपय छात्रों द्वारा बोध परीक्षा प्रश्न। प्रथम तिरंगा ध्वज में कौन कौन से तीन रंग होते हैं। द्वितीय चक्र का चिन्ह किस रंग में होता है। तृतीय ये रंग किस की शोभा बढ़ाते हैं। विस्तृत व्याख्या अध्यापक निम्नांकित पदों का अर्थ विविध युक्तियों से पूछेगा तथा आवश्यक व्याख्या करेगा। प्रथम पद शुक्लः अर्थ श्वेत सफेद प्रणाली वाक्य प्रयोग द्वारा संघ शुक्लः भवति। द्वितीय पद यथाक्रमम अर्थ क्रम के अनुसार प्रणाली समास विग्रह द्वारा क्रम अनतिक्रम अव्यविभाव। तृतीय तमः सत्व रजः सु माया गुणेषु अर्थ माया के गुणों तम सत्व और रज में प्रणाली व्याख्या द्वारा। चतुर्थ शील शालिषु अर्थ गुणवानों द्वारा प्रणाली पद विश्लेषण द्वारा शील का शब्द का अर्थ पूछकर। पंचम पद चक्रवर्तीन इव अर्थ प्रधान सम्राट की प्रणाली अर्थ कथन द्वारा। षष्ठ पद समेधयन्तः अर्थ तरह बढ़ाते हुए प्रणाली प्रत्यय द्वारा सम धन एध धन सत। सप्तम पद यथात्र अर्थ जैसे यहाँ उदाहरण के लिए। प्रणाली संधि विच्छेद द्वारा। अष्टम पद संभूय सफे अर्थ संगठित होकर प्रणाली प्रत्यय द्वारा सम धन भू धन ल्यप पद नाच्छादयेत अर्थ नहीं ढकना चाहिए। प्रणाली संधि विच्छेद द्वारा न धन आच्छेदेत पद दशम बाधेत अर्थ कष्ट देना चाहिए। प्रणाली अर्थ कथन द्वारा मौन वाचन छात्रों द्वारा। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रथम, इस पाठ में किस देश के राष्ट्रध्वज की लेखक चर्चा कर रहा है? द्वितीय, किसकी जय हो? तृतीय, इस तिरंगा ध्वज में कितने रंग विराजते हैं? चतुर्थ, वे रंग क्रमशः कौन कौन से हैं? पंचम, हरा रंग किस गुण का प्रतीक है? षष्ठ, श्वेत रंग किस गुण का प्रतीक है? सप्तम, केसरिया रंग किस गुण का प्रतीक है? अष्टम, ये रंग इन माया गुणों पर किस बात को सूचित करते हैं? नवम, चक्र का चिन्ह किस रंग में अंकित है? दसम, चक्र भारत की किस प्रकार के राष्ट्रों में प्रधानता को सूचित करता है? एकादश, चक्र भारत की अन्य राष्ट्रों में किसके समान प्रधानता को बढ़ाता है? द्वादश, इस ध्वज में स्थित रंग परस्पर क्या करते हैं? त्रयोदश, वे किसको शिक्षा देते हैं? चतुर्दश, वे भारतीयों को क्या शिक्षा देते हैं? पंचदश, तिरंगा ध्वज में शुक्ल रंग किसको प्रभावित नहीं करता? षष्ठोदश, नीला रंग किस को मलिन नहीं बनाता? सप्तोदश, उसी प्रकार हम में से भी कोई किस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार ना करे? अष्टोदश, सभी किस प्रकार जीवित रहें? आदर्श वाचन, द्वितीय अन्विति का शिक्षक द्वारा। उच्चारणाभ्यास, अध्यापक निम्नलिखित पदों का छात्रों से उच्चारण पूछेगा और शुद्धोच्चारण का अभ्यास कराएगा। त्रिरागस्य, अहिंसा चावल व्य। तृतीय, तरंगितो अभवत अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा। विस्तृत व्याख्या, अध्यापक विविध युक्तियों द्वारा निम्नलिखित पदों का अर्थ पूछेगा और यथावश्यक स्वयं व्याख्या करेगा। पद प्रभृति भी अर्थ इत्यादि के द्वारा। प्रणाली, वाक्य प्रयोग द्वारा मोहन सोहन नंदन प्रभृत्यः छात्रः अत्र तिष्ठन्ति। द्वितीय पद चावलंबव्य अर्थ और सहारा लेकर। प्रणाली, संधि विच्छेद एवं व्युत्पत्ति द्वारा च धन अवलंब्य। तृतीय, गौरवम महत्व को पर्याय कथन द्वारा महत्वम। सप्तम पद प्राण पणे नापि प्राणों की बाजी लगाकर समास विग्रह द्वारा। प्राणानाम पणे नापि षष्ठी तत्पुरुष रक्षणीयम रक्षा करनी चाहिए। व्युत्पत्ति द्वारा रक्ष धन अनियर। मौन वाचन छात्रों द्वारा। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रथम, इस तिरंगा ध्वज की छाया में हमारे कौन कौन से नेता रहे थे? द्वितीय, उन नेताओं में ने किसका सहारा लेकर स्वतंत्रता को प्राप्त किया था? तृतीय, यह स्वतंत्रता हमारे द्वारा कब प्राप्त की गई थी? चतुर्थ, 15 अगस्त 1947 को यह राष्ट्रध्वज कहाँ लहराने लगा था? पंचम, हमारे द्वारा सदा किसकी रक्षा की जानी चाहिए? षष्ठ, हमारे द्वारा सदैव इस ध्वज के गौरव की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए? सस्वर वाचन, शिक्षक द्वारा दोनों अन्वितियों का। आवृत्त्यात्मक प्रश्न। प्रथम, स्वतंत्र भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति रागः सन्ति? द्वितीय, त्रिराग ध्वजे के रागा सन्ति। तृतीय शुक्ले रागे किम अंकितम अस्ति। चतुर्थ ते रागा अस्मान कथम शिक्षन्ति। पंचम अस्माभिः अस्य ध्वजस्य रक्षा कथम करणीया। गृहकार्य संपूर्ण पाठ का हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए।